بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان هذا القرآن بے شک یہ قرآن یهدی ہدایت کرتا ہے للتی هي أقوم اس راہ کی طرف جو سب سے تصدیقی مستحکم جامع اور صحیح وقت پہ پہنچانے والی ہے. انسان کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی میتھڈ کوئی نہ کوئی پروسیس کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے. بغیر کوئی طریقہ اختیار کیے وہ کوئی بھی کام خود بخود نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا. سب کام ان کے کوئی نہ کوئی ان کی کاز ہوتی ہے, ان کا کوئی سبب ہوتا ہے, کوئی عامل ہوتا ہے جو اس کو وجود ملاتا ہے, جو اس کو وجود بخشتا ہے, جو اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے. کوئی بھی کام آپ دیکھ لیں, زندگی کا کوئی بھی کام اٹھا کے خود بخود کوئی کام نہیں ہوتا. یہ جو بلب آپ نے بٹن جلایا بلب جل گیا یہ خود بخود جلا ہے؟ نہیں. آپ نے الیکٹرون پروٹون کو یہ راستہ فراہم کیا کہ وہ سٹار سے نکل کر جو ہے وہ اس بلب تک پہنچیں. فلو آف الیکٹرون پروٹون جو ہے صحیح ہے, اس کا نام الیکٹریسٹی ہے. یہ کام خود بخود نہیں. آپ نے بٹن دبا پنکھا خود بخود چلنا شروع ہو گیا؟ خود بخود نہیں چلنا. آپ نے الیکٹریسٹی کو اجازت دی ہے, الاؤ کیا ہے کہ وہ جائیں اور اس برقی رو کے ذریعے سے اس پنکھے کی موٹر کو حرکت میں لے کر آئے اور یہ جو ہے اس کو پش کرے اور پنکھا چلنے لگے, اس کے پر چل کے آپ کو ہوا دیں. آپ اگنیشن گھماتے ہیں, کک مارتے ہیں, گاڑی اسٹارٹ, موٹر سائیکل اسٹارٹ ہو جاتی ہے. خود بخود نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ ہر کام کرنے کا ایک میتھڈ ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. بعض اوقات آپ جو ہیں اگر اگنیشن کی چابی جو ہے وہ ہینڈل لاک میں لگائیں گے تو آپ کی موٹر سائیکل اسٹارٹ ہو جائے گی. بٹن کے علاوہ کوئی اور بٹن دبائیں گے بلب جل جائے گا, صحیح؟ اسی طرح دنیا کو جب ہر کام کرنے کا ایک طریقہ کار ہے تو پھر زندگی گزارنے کے بھی ایک طریقہ کار ہے. انسان کی تین قسم کی نیڈز ہیں, تین قسم کی ضروریات ہیں, تین قسم کی نیاز ہیں. ایک اس کی انفرادی, ایک اجتماعی اور ایک عالی, صحیح؟ انسان کی تین قسم کی ضروریات ہیں. دوسرا دیں مارکر, یہ رکھیں اپنے پاس, یہ بھی نہیں چل رہا ہے, شاید یہ چل جائے. جی, ضروریات انسان فردی یعنی انفرادی, اجتماعی اور عالی, صحیح؟ عالی قسم کی. مثلا غذا, آرام, یہ انسان کی انفرادی ضروریات ہیں, صحیح؟ یہ انسان کی انفرادی ضروریات ہیں. انسان کو, ہر انسان کو کھانے کی ضرورت ہے. ایک انسان کی اجتماعی ضروریات ہیں, قانون, ٹریفک کا قانون ہونا چاہیے, اسکول کا قانون ہونا چاہیے. بلا کو قانون کوئی چیز ایسا تو نہیں کہ جس کی جب جو چاہیے جیسا چاہے جیسا چاہے کرے. آپ کھڑے ہو جائیں, کبھی آپ دیکھتے ہیں ٹریفک جو جیم ہو گیا ہے, پھنسا ہوا ہے, ہر شخص چاہ رہا ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں. ایسے وقت کوئی تو ہونا چاہیے جو کنٹرول کرے, ویلے یہ قیامت تک ہی کھڑے رہیں گے, ایسے لڑتے رہیں گے. قانون کیا ہے؟ انسان کی ضرورت ہے. تیسری عالی قسم کی ذمہ داری, رہبر, ہدایت, دین, یہ عالی قسم کی ضروریات ہیں, سمجھ گئے؟ ایک انفرادی قسم کی ہے کہ آپ کے بال کیسے ہونے چاہیے, آپ کے کپڑے کیسے ہونے چاہیے, آپ کا آرام کیسا ہونا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. اجتماعی, قانون, سوسائٹی, ٹھیک ہے, نظم و ضبط, یہ کیا ہے؟ یہ اجتماعی, سوشل. اور تیسری قسم کی ہے عالی, یعنی عام انفرادی اور اجتماعی نیاز اور ضروریات سے بڑھ کر کیا ہے؟ عالی. اس کا مطلب دین جو ہے وہی جو ہے, دین, وہی, امام, رہبریت وغیرہ, یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان کی اجتماعی, یہ انسان کی عالی ترین ضروریات میں سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہمیشہ انسان کی جو عالی ترین ضروریات ہیں ان میں شامل ہے, یعنی جو بہت ہی چھوٹی لیول کی ان میں سے نہیں ہے. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ دین ہمیں میتھڈ بتاتا ہے, طریقہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم کس چیز کو گزاریں, کس چیز کو انجام دیں. मैंने बताया हर चीज़ को अंजाम देने का एक प्रोसेस है, एक रास्ता होता है। आपने यहाँ खड़े हुए आप ठीक, और आपने यहाँ जाना है इस पहाड़ पे, ठीक है, और कोई तो कोई तरीक़ाकार होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप बस सामने जो नाक की सीध में कान की आड़ में, ऐसा तो नहीं है कि बस चलते चले जाने बिल्डोज़र आपके पास जो सामने आया ढहा दो गिरा दो, नहीं, राइट लेफ्ट मुड़ना है, कहीं ब्रेक लगाना है, ऐसा तो नहीं होता कि भाई एक्सीलेटर दिया और जूं 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 और चल दिए। होता है बच्चों में, नई नई मोटरसाइकिल चलाने आती है तो फिर जूं जूं कर रहे होते हैं, वो मोहल्ले वाले तंग होते हैं, वो समझते हैं तेज़ चलाना ज़्यादा महारत है। जी नहीं, तेज़ चलाना महारत नहीं है, हल्के चलाना और अपने बैलेंस को कायम रखना ये महारत है। समझे आप, हल्के चलाना और बैलेंस रखना ये महारत है। खैर, तो क्या है कि वहाँ पे आप कहीं ब्रेक लगाते हैं, कहीं इंडिकेटर देते हैं, कहीं एक्सीलेटर देते हैं, कहीं गियर चेंज करते हैं, प्रोसेस है, तरीक़ाकार है, मेथड है। कुरान मजीद क्या फरमाना, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। कुरान मजीद भी जिस तरह दुनिया के लोग या दुनिया के मुख्तलिफ नज़रियात आपके सामने राहें खोलते हैं, उसी तरीके से दीन भी एक आपके सामने रास्ता खोलता है, जो जामे तरीन रास्ता है, सबसे चौड़ा रास्ता है, सेफ रास्ता है, मुस्तहकम रास्ता है, सही मज़बूत और पायदार रास्ता है। यानी इससे ज़्यादा मज़बूत और पायदार कोई और रास्ता नहीं है जो आपको आपकी मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे। ये देखिए दिए वाजे, यहाँ तो कोई सवाल हो। कुरान क्या कह रहा है, इन्ना हादल कुरान, इन्ना हादल कुराना यहदी लिल्लती हिया अक्वम। ये कुरान उस रास्ते की हिदायत करता है जो सबसे ज़्यादा अक्वम, कायम, मुस्तहकम, पायदार रास्ता है। दुनिया के और भी रास्ते हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन दीन का, कुरान का बताया हुआ रास्ता जो सबसे ज़्यादा मुस्तहकम रास्ता, पायदार रास्ता है। मिसाल के तौर पर मैं एक बच्चे से कहूँ, बेटा ये खाली रोड पड़ी है, इस पर ज़रा 120 की स्पीड से मोटरसाइकिल चला के दिखाओ। अगर जी आओ साहब चर्च जूँ जूँ किया और आया और माशाल्लाह आप भी ताली बजा दी। मैंने कहा शाबाश बेटा, जरा नीचे उतर आओ, आओ मैं तुम्हें एक और जगह लेके जाता हूँ। मैं उसको वहाँ लेके गया जहाँ पर मोटरसाइकिल रैली होती है, रेस होती है। ये ट्रैक बना हुआ है, आप मैप पे देखते हैं ना, मिनिमाइज़ करके ट्रैक देखते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचे, यहाँ पे कांटे हैं या पत्थर हैं या पत्थर पड़े हैं या स्पीड ब्रेकर बना हुआ है या कीचड़ है या कुछ और है, ये हर्डल्स बनी हुई है मुख्तलिफ जगह। अब मैंने कहा बेटा आप ज़रा 120 की स्पीड ज़रा चलाओ, यहाँ महारत है, सही, यहाँ चलाना महारत है। अब जनाब ये साहब यहाँ से तो शुरू हुए, स्टार्टिंग पॉइंट ये है यहाँ से शुरू हुए, यहाँ तक आए, ये तो यहाँ मुड़ गए, ये सीधे खड्डे में चले गए, ब्रेक लगाते। महारत तेज चलाना नहीं है, महारत ये है कि जो मुश्किलात हैं उनसे बचकर अपनी मंजिल मकसूद तक टाइम से पहले फिनिश पॉइंट पे पहुँचना है, यह महारत है या नहीं है, सही। ये यहाँ तक तो चले लेकिन ये मोड़ तो यहाँ मुड़ गया, ये सीधे निकल गए, तो ये महारत नहीं है। क्या मतलब इसका, ये जो मुश्किलात आई हैं ये क्यों हैं, ये जो पत्थर, स्पीड ब्रेकर, कीचड़, लकड़ी, ये सब पड़े हुए, कहीं टीला बना हुआ है, कहीं थोड़ा गहरा बना हुआ है, ये सब क्यों होते हैं, क्यों होते हैं? सोचें, आप बताएं क्या आप में है, जी आप में एबिलिटी है या नहीं है, यही चेक करने के लिए होते हैं ना, आप में सलाहियत है कि आप फर्स्ट आ सकें, चेक करने के लिए होते हैं ना। आप बताएं सलाह, आप बताएं एबिलिटी, और कोई कौन अच्छा चला सकता है, और महारत क्या है, बहुत अच्छा जी, आप बताएं। ये तो सब रिपीट हो रहा है, कोई नई चीज़ बताएं ना, ये फिनिश टाइम कुछ तो लेकर आए ना यहाँ पे। वक्त से पहले कौन मंजिल पे सही सालिम पहुँचता है, वक्त से पहले कौन सही सालिम मंजिल पे पहुँचता है, वक्त से पहले ही पहुँचना। जैसे एक साहब जो है रेस में, मैराथन रेस में फर्स्ट आ गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया उन्होंने, उनके गले में हार डाले जा रहे हैं, कैमरामैन दौड़ रहे हैं, वो भी दौड़ रहे हैं। उन्होंने कहा भाई आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, उन्होंने कहा वो तो ठीक है, ये बताओ मेरे पीछे काला कुत्ता किसने पीछे छोड़ा गया। एक ये जीतना होता है, को ये जीतना जीतना नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे थोड़ी कायम हो जाता है, ये इसलिए हैं ताकि आपकी जो महारत इस खाली रोड पर थी 120 की स्पीड से, वो यहाँ आप साबित कर सके कि मैं हूँ, मैं राइडर हूँ, मैं चला सकता हूँ, आई कैन डू इट जी। जिसको आप क्या कहते हैं, मुझ में तप्पड़ है, हैं सही, क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, हैं बापू, अच्छा नहीं ये तो बहुत दूर की लाए हो, जो कहते हैं वो बताओ, सही है ना। ये आपका सिरात मुस्तकीम है, मसलन फ़र्ज कीजिए सिरात मुस्तकीम ऐसा रास्ता नहीं है, सिरात मुस्तकीम का मतलब सीधा रास्ता है, सही, सीधा रास्ता ज़रूर है लेकिन उसमें खम है। मुस्तकीम कोई एक बिल्कुल सीधा स्केल रखे एक रास्ता नहीं खींचा गया है, मुस्तकीम सिरात मुस्तकीम ये सीधे रास्ते की, सीधे रास्ते की, इसमें कोई को मोड़ नहीं है, मोड़ हैं, मोड़ हैं, सही मोड़ हैं, लेकिन मुस्तकीम से मतलब ये अल्लाह की तरफ बहिफाजत पहुँचाने वाला, इन हदलो यहदी लिल्लती ही अक्वम, कायम तरीन, मुस्तहकम तरीन, सीधा तरीन, सच्चा तरीन, खालिस तरीन रास्ता है यहाँ से लेके यहाँ तक। खूब अगर ऐसे मिस करेंगे तो फिर क्या होगा, दर्स निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे, हम आगे निकल जाएंगे, तो ऐसे में इस बात में हो। सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता है, उसमें पेचो सीधा रास्ता उस उन रास्तों के मुकाबले में है कि जो गुमराह कर देते हैं। आप कहते हैं यार बस तुम सरागुड़ से सीधा आ जाओ, पुल आएगा, पुल से सीधा मुड़ जाना, बस वो सीधा रास्ता आ रहा है। खूब बिलाखर कहीं ना कहीं तो पीछे खम होंगे ना, हल्का सा ओवरटेक करेगा, लेफ्ट मुड़ेगा, राइट मुड़ेगा, फिर गेट पे आएगा, फिर राइट पे मुड़ेगा, फिर सीधा आएगा, तो कहीं ना कहीं तो उसको मुड़ना पड़ेगा ना। ये आपका सिरात मुस्तकीम है, और ये हर्डल्स, ये रुकावटें, ये परेशानियाँ, ये ऊँच नीच, ये शैतान है। शैतान ने कहा था ना कि मैं सिरात मुस्तकीम में बैठूँगा और जो यहाँ से गुजरेगा उस सबको गुमराह करूँगा, सही। ये इसलिए हैं ताकि आप अपनी महारत दिखाएं, वक्त से पहले सही सालिम यहाँ पहुँचें। मुमकिन है कहीं गिर जाएं आप लेकिन फिर संभाल जाएं, लेकिन वक्त से पहले आप फर्स्ट आ जाएं। ये मुश्किलात शैतान हैं और ये रास्ता सिरात मुस्तकीम है। बस जो लोग पूछते हैं शैतान का क्या फ़लसफ़ा है, नफ्स क्यों है, शहवत क्यों है, बुरी चीज़ों में लज्जत क्यों रखी है अल्लाह ताला ने, गुनाहों में दिल क्यों लगता है ज़्यादा, वगैरह वगैरह, गुनाह करते हैं, हैं कुरान खोला नींद आने लगती है, SMS खोला, व्हाट्सएप खोला आँखें पूरी खुल जाती हैं, हद से ज़्यादा, दोस्तों में बात करने में कितना मज़ा आता है लेकिन अगर कोई हदीस, कोई कुरान, कोई मजलिस हो तो फिर वहाँ पर सुस्ती हो रही होती है, वजह क्या है। तो बुरी चीज़ों में खुदा ने लज्जत क्यों रखी है, क्या अच्छी चीज़ों में लज्जत नहीं रखी, रखी है, हमने टेस्ट नहीं किया, सही। एक शख्स था वो चमड़े के कारखाने में काम कर, चमड़े की बहुत स्मेल होती है, बू होती है। एक दिन वो अत्तार की गली में परफ्यूम चौक पे आ गया, यूँ कहूँ आसान अल्फाज में, परफ्यूम चौक जहाँ पे बहुत सारी परफ्यूम की दुकानें हो, मसलन परफ्यूम की गली में आ गया, परफ्यूम गली में आ गया। अब उसने पहली दफ़ा जो खुशबू सुनी बेहोश हो गया, اب کوئی لوگ ادھر سے آ رہے ہیں کوئی ادھر سے آ رہے ہیں، ایک اس میں ذرا دانہ عقل مند تھا، اس نے کہا اس کو چمڑا سنگھاؤ، تازہ چمڑا، چمڑا لے کر آ اس کی ناک پہ رکھ دیا، زندہ ہو گیا، ہوش میں آ گیا۔ لوگ بڑے بڑے، ارے آپ نے تو اس کو زندہ کر دیا، یہ کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، یہ چمڑے کے کارخانے میں کام کرتا تھا، اس کے دماغ میں اور ناک میں چمڑے کی بدبو بسی ہوئی تھی، یہ جب عطر کے ماحول میں آئے اس کو عطر کی خوشبو برداشت نہیں ہوئی، بے ہوش ہو گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو انسان جیسی اپنی فضا قائم کرے گا اس کو اس چیز میں مزہ آنے لگے گا۔ دوسری خوشبو جس کے لیے لوگ ترستے ہیں اس کے لیے بدبو ہو جاتی ہے۔ پرفیوم اور عطر کی خوشبو اس کے لیے اچھی تھی لوگوں کے لیے، لیکن اس کے لیے بری تھی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ صحیح، کیا اللہ تعالیٰ نے صرف برائیوں میں لذت رکھی ہے، اچھائیوں میں نہیں رکھی؟ جواب نہیں، دونوں میں لذت رکھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کس چیز کو ٹیسٹ کرتا ہے، جس کو ٹیسٹ کرے گا وہی اس کی زبان پہ آ جائے گا، وہی اس کی روح میں آ جائے گا۔ اگر ہم عبادت کی لذت کو ٹیسٹ کریں، چکھیں، تو ہم عبادت کی لذت سے آشنا ہوں گے، اور اگر ہم گناہ کو چکھیں گے تو پھر گناہ کی لذت سے آشنا ہوں گے۔ لیکن دونوں لذتوں میں فرق ہے، دونوں کی جو ایکسپائر ڈیٹ ہے دونوں میں فرق ہے۔ صحیح، گناہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، نیکی کبھی ایکسپائر نہیں ہوتی، ایک وقت میں ایکسپائر ہو جاتی ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ایکسپائر والی، یہ بات واضح؟ سوال، پھر شیطان کے وجود کا فلسفہ کیا ہے؟ برائیاں نفس امارہ، کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تاکہ تمہاری ایبلٹی ظاہر ہو، تاکہ تمہارے اسکلز کھلیں، تاکہ تمہارے جوہر کھلیں، تاکہ پتہ چلے۔ اگر میں کہوں 120 کی اسپیڈ خالی روڈ پہ ایک مطلب تم دوڑاؤ، تم ایک پہیے پہ جی ایک ویل پہ چلا دو گے، ہنر نہیں ہے۔ ہنر کہاں پہ؟ یہاں پر ہے، جہاں پہ مشکلات ہوں، مشکلات کو فیس کرو، اور مشکلات کو فیس کرنے کے بعد ٹائم سے پہلے جی فنش پوائنٹ پہ، فنش پٹی پہ پہنچو۔ بات واضح ہو گئی؟ اب شیطان کیوں؟ روکنے کے لیے ہے، اسپیڈ کم کرنے کے لیے ہے، صحیح، آپ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کہ رکو، اسپیڈ کرو، سلو کرو، رک جاؤ، نہ جاؤ، آگے خطرہ ہے۔ لیکن جو رائڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے سوار ہوتا ہے، وہ پھر نہیں رکتا، وہ بحفاظت اپنے آپ کو گناہوں سے اور شیطان سے بچاتا، وہ پہنچاتا ہے۔ واضح بات؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو راہ ہے اس میں جو مشکلات آ رہی ہیں، ٹھیک، ان میں اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی، لذت اس لیے رکھی ہے تاکہ آپ کو چھوڑنے کا احساس ہو سکے۔ مثلا یہ کلاس ہے ہماری، ایک کس میں 20 لڑکے ہیں، میں کہوں چلیں بھائی سب پاس، لائیے، پیپر دینے کی ضرورت نہیں، آپ بھی پاس، آپ بھی پاس، آپ بھی پاس، پاس مارکس سب کو دے دیے، اس میں کمپٹیشن نہیں ہے۔ جی 2020 کا کیا ہوا؟ کل ہے، خوب کہیں گے جناب دونوں 50-50 مارکس لے لیں دونوں، جی بعض اوقات انسان تصویریں دیکھتا ہے ہنسی آتی ہے۔ ایک تصویر میں دیکھ رہا تھا میں، جس میں جو انڈیا کو دکھایا تھا ورلڈ کپ تھا، اس کے اوپر سلائی مشین رکھی ہوئی تھی۔ بعض اوقات خوب، اگر جو ہے ہم کہیں گے جناب بس دونوں کو آدھے مارکس دے دیتے ہیں، دونوں ورلڈ چیمپئن ہیں، یہ مزہ نہیں آئے گا، مزہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کمپٹیشن نہیں ہے۔ کمپٹیشن جو ہے انسان کی اسپرٹ کو بڑھاتا ہے، صحیح، کمپٹیشن، مقابلہ، دو لوگوں کا، دو ٹیموں کا، دو انسانوں کا، دو گروپس کا موازنہ، ایک دوسرے سے بڑھنا، ایک دوسرے اوورٹیک کرنا، سبقت دینا، یہ لذت بڑھاتا ہے۔ مثال کے طور پر مقابلے کی، کرکٹ کی، فٹ بال کی، کوئی بھی چیز، امتحان کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے رکھ، لذت اس لیے قرار دی ہے گناہ میں تاکہ ہمیں چھوڑنے کا احساس ہو۔ مثلا حدیث میں ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے اچانک آپ جیسے مڑے، سامنے سے نامحرم کوئی عورت آ رہی ہے، لڑکی آ رہی ہے، اور آپ نے اپنی نظریں فوراً نیچے کر لی، ہٹا دی وہاں سے، سر جھکا لیا، فوراً اللہ تعالیٰ، حدیث میں ہے کہ ایک حور سے آپ کا عقد، ایک نکاح کر دیتا ہے فوراً، اسی وقت اللہ تعالیٰ ایک حور سے آپ کا نکاح کر دے گا، جو روز قیامت آپ کو इंशाल्लाह आपके खाते में मिल जाएगी आपको, सही अभी नहीं मिलेगी। हाँ ठीक है, ये जो लज्जत थी गुनाह की, इसको आपने सरफ़ नज़र किया, ये छोड़ना जो है, मिसाल के तौर पर यहाँ आप टेप लगाएं, कितनी आसानी से उखड़ जाएगा, बिल्कुल इजीली। लेकिन अगर आप यहाँ टेप लगाएं बाल वाली जगह पे, हैं जी, चार दफा ऐसे ऐसे करेंगे, होता है नहीं होता हो, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हेयर यहाँ पे नहीं है, बाल नहीं है, यहाँ यह टेप को निकालना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे जहाँ बाल हो, सही, ये जो हम बाल वाली जगह से टेप उखाड़ रहे हैं, ये गोया अपने दिल को उस गुनाह की लज्जत से हटा रहे हैं। ये जो तकलीफ़ हो रही, ये कंपटीशन है, और यही इंसान को आमादा करता है नेक कामों की अदायगी के लिए। अगर ये ना हो, ऐसे ही हो जैसे हथेली पे से अपने जो है टेप को उखाड़ देना है, तो इसमें कोई तकलीफ़ ही नहीं होगी, तो उसकी कोई अजर भी नहीं है। अगर गुनाह में कोई लज्जत ही नहीं होती, मज़ा ही नहीं होता, गाने में, वालदैन की नाफरमानी में, झूठ बोलने में, कि झूठ बोल के हम वालदैन से चले जाएँ, मिसाल के तौर पर कोई गलत काम कर लें, क्या है, आप छोड़ भी देते, आप कहते कुछ नहीं। मतलब एक शख्स अंधा आके गए, जनाब मैं तो नामहरम को देखता ही नहीं। अच्छा, बाकी नहीं देखते? नहीं नहीं, मैं नहीं देखता। क्यों नहीं देखते? मुझे नज़र ही नहीं आता। एक शख्स, जनाब मैं आज तक मैंने गाना नहीं सुना। माशाल्लाह बड़े पाकिस्तान नौजवान है। जी हाँ, मुझे सुनाई नहीं देता। हाँ, जैसे अक्सर बच्चे कहते हैं भाई मैं नमाज फजर के बाद नहीं सोया। अच्छा शाबाश बेटे, कब पड़ी थी नमाज फजर? 4 बजे शाम में। ठीक है, बाद बच्चे कहते हैं 4 बजे शाम में पढ़ी थी, उसके बाद से नहीं सोया। बहुत सही कह रहे हैं कि फजर के बाद नहीं सोया, फजर पढ़ी कब थी? 4 बजे पढ़ी थी। एक शख्स बसन अब इशारों से कह के, जनाब मैंने कभी कोई गाली नहीं दी, गीबत नहीं की। क्यों? मैं बोलते ही नहीं। ये फजीलत है उसके लिए? कोई बहरा है वो कि मैंने गाने नहीं सुने, फजीलत है उसके लिए, बरतरी है? एक शख्स, मैं नामहरम को देखता ही नहीं। तुम्हें सलाहियत ही नहीं है देखने की, तुम ना देखो तो ये फजीलत नहीं तुम्हारे लिए। ठीक है कि तुम गुनाहों से बचे हुए हो, नहीं देख रहे हो, ये बहरे हो, नहीं सुन रहे हो, ये गूंगे हो, नहीं बोल रहे हो, सवाब तुम्हें मिल रहा है गुनाहों से बचने का, लेकिन तुम्हें वो सवाब नहीं मिलेगा जो जबान रखने वाले को, सुनने वाले को, देखने वाले को, इनकी सलाहियत रखने के बाद अपने आप को गुनाहों से बचा के मिलेगा। वाज़े? ठीक है ना। तो ये जो लज्जत रखी गई है, ये कंपटीशन है असल में अल्लाह ताला की तरफ से। फिर जिस तरह अल्लाह ताला ने, अगर ये जो दिल छुड़ाने के लिए कि आपको पता चले कि आपने कुछ किया है, सुबह उठना, बिस्तर छोड़कर, नींद छोड़कर, ठीक है, अपनी आंखों को नामहरम से बचाना, कान को गानों से बचाना, जबान और मुंह को गीबत और बुराई से बचाना, किसी बुरी बात से बचाना, ये लज्जत आपको हासिल नहीं होगी अगर इनमें चार्म नहीं होता, इनमें लज्जत नहीं होती, इनमें अट्रैक्शन नहीं होती। लेकिन अगर हम ये कहें कि खुदा ने अच्छे कामों में लज्जत नहीं रखी, तो ये भी गलत है। नहीं, अच्छे कामों में लज्जत रखी है, और यही वजह है कि इमाम ये दुआ फरमाते हैं। क्या दुआ फरमाते हैं? अल्लाहुम्मा साथ साथ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अज़िक़नी हलावता ज़िक्रिका। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, अज़िक़नी मुझे ज़ायका दे, टेस्ट दे मुझे मिठास का अपने ज़िक्र की। ए अल्लाह मुझे अपनी याद और ज़िक्र की मिठास चखा दे। सही, जैसे कभी कभी कोई चीज़ को इंसान खाता है, या थोड़ा सा दे टेस्ट करूँ मैं, हैं छीन लेते हैं, हैं आइसक्रीम खा रहा है कोई, जी ज़बरदस्ती लेके एक बाइट ले लेंगे, एक हल्की सी ज़बान लगा देंगे, होता है दोस्तों में, टेस्ट करते हैं। आप दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं, जैसे आपने दिखाना कौन सी है, कौन सा फ्लेवर खा रहे हो, भाई तुम अपना खाओ, तुमने अपनी पसंद के लिए नहीं, उसकी भी थोड़ा सा एक चमचा एक स्पून थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। इमाम क्या फरमा रहे हैं? ए खुदा मुझे अपनी याद की लज्जत अता फरमा। अब आप देखें, यही वजह है कि इमाम हुसैन क्या फरमाते हैं नमाज के बारे में, इन्नी उहिब्बुस सलाह, मैं नमाज से मोहब्बत करता हूँ, मैं नमाज से इश्क करता हूँ, आई लव नमाज। इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं, मैं नमाज से मोहब्बत कर, इन्नी, ये रोज़े क़याम रोज़े आशूरा इमाम हुसैन ने फरमाया था, इन्नी उहिब्बुस सलाह, मुझे नमाज से मोहब्बत है, नमाज मेरी टेस्ट में है, मैं नमाज की लज्जत चख चुका हूँ। इमाम ज़ुनून अब्दीन नमाज़ पढ़ रहे हैं, बच्चा कुएं में गिर गया, शोर हो गया, इमाम नमाज़ पढ़ते रहे, नमाज तमाम हुई, पूछे शोर कैसा, कहा कि आपका बच्चा गिर गया तो आपको नहीं पता, कहा कि नहीं, घर में आग लग गई, दो तीन वाक़े मशहूर हैं। इमाम नमाज़ पढ़ते, नमाज़ पढ़ कर शोर कैसा है, कहा घर में आग लग गई थी, कहा मौला आपको नहीं पता चला, नहीं। एक जगह इमाम अब्दीन फिर नमाज़ पढ़ रहे हैं, इनकी आबा जो है जो ऐसे सरक गई, ऐसे करे नमाज़ पढ़ते पढ़ते मसलन ऐसे गिर गई, इमाम नमाज़ पढ़ते रहे। उनके एक सहाबी था अबू हमजा, उन्होंने कहा मौला आपकी नमाज में आपकी आबा गिर गई थी, आपको ऐसा आपने ठीक नहीं। मौला ने कहा कि तुझे पता नहीं था मैं किसकी बारगाह में खड़ा था। उसने कहा मौला अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर हम तो हलाक हो गए, हमारी नमाज तो गई। इमाम ने कहा नहीं, अपनी नमाजों में जो कमी रह जाए उसको नाफला नमाजों से पूरा करो, वाजिब नमाजों की कमी को नाफला नमाजों से पूरा करो। यानी अहले बैत चूँकि टेस्ट उनको मालूम था, टेस्ट उनको हासिल था मुकम्मल, लिहाजा वो उस चीज़ से आशना थे। तो अल्लाह ताला ने अच्छाइयों में भी टेस्ट रखा है, हमको नहीं इल्म, हमने टेस्ट नहीं किया। जैसे ऐसे ही है, आप किसी को चाय दें वो कहें कि बहुत अच्छा टेस्ट है, आइसक्रीम दें बहुत अच्छा है, सालन दें बहुत अच्छा है, कोई हलवा दें बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसको अरीब को बुखार हो रहा है आप कहेंगे चाय पियो क्या कड़वी चाय है, अच्छा आइसक्रीम खा लो, नहीं कड़वा लग रहा है मुझे, अच्छे से अच्छा खाना लगे नहीं, क्यों, बिरयानी ख़राब हो गई, चाय ख़राब थी, आइसक्रीम सड़ी हुई थी, इंसान का मिजाज ख़राब हो गया, टेस्ट का। अब उस गंदे टेस्ट में आप जो भी अच्छी चीज़ डालेंगे वो कहेगा नहीं, बुरे इंसान को जितना भी अच्छा ही समझाएंगे वो अच्छा ही समझ में नहीं आएगी। उसके लिए उसके टेस्ट को बदलें, उस टेस्ट को बदलने के लिए तो एक रास्ता है और वास्ता कुरान और अहले बैत का है। कुरान अहले बैत, जो भी अहले बैत के दस्तरखान पे आ गया वो ज़रूर टेस्ट करेगा ये। और बात, अच्छा अपने टेस्ट को भी बढ़ाना चाहिए, अगर आप टेस्ट को नहीं बढ़ाएंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, जैसे आप अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं, जिम जाते हैं तो रोज़ाना अपने अपने आईने में देखेंगे, थोड़ी सी मछली निकाल के देखेंगे, फिर दोस्तों को दिखाएंगे, हैं हड्डियाँ पसली नज़र आ रही फिर भी यूँ यूँ करके खड़े हो जाएंगे जी, अपने आप को ग्रोथ करा रहे होते हैं नहीं करा रहे होते हैं, वेट बढ़ा रहे होते हैं या मसल्स बना रहे होते हैं, मसला नर्स कर रहा हूँ, या कोई भी स्किल ले लें आप, स्पोर्ट ले लें, तालीम ले लें, कुरान ले लें, मस्जिद ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, आज़ादारी ले लें, उसमें आप अपनी स्किल्स बढ़ा रहे होते हैं, इसमें भी हमें स्किल बढ़ानी चाहिए, वो है कुरान अहले बैत का रास्ता। और यही वजह है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कोई नौजवान जब भी कुरान पढ़ेगा नौजवानी में तो कुरान उसके रगो पे में दाखिल हो जाएगा, उसकी फ़िक्र में उतर जाएगा, उसके गोश खून में दाखिल हो जाएगा। कोई नौजवान, आप नौजवान, आप नौजवान, आप सब नौजवान हैं, अगर इस उम्र में इस स्टेज में आप कुरान के दोस्त हो जाएं, कुरान आप में उतर जाएगा। मौला अली फरमाते हैं कि तुम जब भी कुरान के साथ बैठोगे, दें तुम जब भी कुरान के साथ बैठोगे, यानी जब भी कुरान को रीड करोगे, पढ़ोगे, मुतालिया करोगे, अरबी के साथ उसको तर्जुमा पढ़ोगे, सही, जब भी तुम कुरान के साथ बैठोगे, बैठने से पहले पढ़ना है उसको, ठीक, जब तुम बन करके खड़े होगे तो या तुम्हारे कमाल में इजाफा होगा एक, या तुम्हारे एक ऐब और नुक्स में कमी होगी, दो चीज़ों में से लाजमी तौर पे ये होना है, या एक बुरी चीज़ तुम में से रिमूव और डिलीट हो जाएगी, या तुम एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाओगे, तुमको एक तरक्की का जीना और मिल जाएगा, एक स्टेप तुम ऊपर आ जाओगे। मुमकिन है वो एक स्टेप जो है वो 10 स्टेप के बराबर हो। कैसे? मिसाल, लड्डू खेला है आप लोगों ने, उसकी पुश्त उसके बैक पे एक गेम बना होता है, सीढ़ी बनी होती है, मसलन 4 पे जो है वो एक सीढ़ी बनी होती है जो आपको 50 पे ले जाती है। सही, ये गेम है। लेकिन बाज नेकियां होती हैं जो आपको 4th मुकाम से 50वें मुकाम तक ले जाती है, ये हकीकत है। और बहुत से गुनाह ऐसे होते हैं जो आपको 99 से 10 पे ले आते हैं। बहुत से गुनाह ऐसे होते हैं जिसको मैंने बताया था, एक नौजवान ने एक हराम नगर डाली थी किसी पे, 11 साल वो एक गुनाह में मुब्तला रहा, 11 साल कैद रहा अपने नफ्स की कैद में। बाद होते हैं जो एक ही रात में जो है ऊपर चले जाते हैं। इनकलाब से पहले एक नौजवान था शाहरुख, बहुत बद किरदार था, चोर उचक्का लफंगा जो आप कहें वो था, रोज़ाना थाने से फ़ोन आता था उसकी माँ को, अपने बेटे को छुड़ा लो, माँ पेपर लेके आती घर के, उसको जमानत करा के ले आती। लोग कहते ये नमाजी परहेजगार थे, लोग कहते थे ये तो इसने तेरी आबरू नहीं छोड़ी, इज्जत नहीं छोड़ी, तू कितनी नमाजी परहेजगार और ये कितना बदमाश। कहती थी ठीक है अब क्या करूँ, बेटा है मैं निकाल तो नहीं सकती, लेकिन एक दुआ करती थी, ऐ खुदा इसको इमाम ज़माना का सिपाही बना दे। ये रात में रोज़ सुनता था माँ की इबादत को, दुआ को देखता था। वो आपने एक तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया पे कि एक नौजवान जो है सीढ़ियों पे चढ़ रहा है और सीढ़ियाँ बीच से टूटी हुई हैं और बीच में एक हाथ नज़र आ रहा है, वो क्या है, वालदैन का हाथ है, वो नेकियों का हाथ है जो उन टूटी हुई सीढ़ियों और के दरमियान एक कनेक्टिंग ब्रिज का काम कर रहा है। देखिए नहीं देखी, ठीक है ना, वो क्या है, बाज़ नेकियाँ ऐसी होती हैं वालदैन की आपकी जो आपको ऊपर पहुँचा देती हैं। चुनाचा क्या हुआ, उसने तौबा की, जाके शहीद हो गया, शहीद हो गया। या एक और शख्स था अब्बास इमराई, नौजवान था 20-25 साल का, वो नौहा खान था, वो हज़रत ज़ैनब के हरम की हिफाजत के लिए गया और शहीद हो गया। उसका बाद में वसीयतनामा मिला, उस वसीयतनामे में लिखा था कि शब कदर मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, अगले साल तुम हमारे पास हो गए, लिहाजा जल्दी से अपने गुनाहों को साफ़ करो, किसी का हक़ है तो वो उसको पहुँचाओ, यानी हलाली तलब करो, हलाली तलब करो, यानी क्या मतलब, यानी किसी का हक़ है तो उस तक लौटाओ, कोई वाजिब है तो अदा करो, वक्त बहुत कम है, अगले साल तुम हमारे पास हो गए। और यही हुआ, इस आने वाले माह रमज़ान से पहले वो शहीद पा गया। तो अगर अहले बैत खुद ब खुद उसको बुला लेते हैं, तो कहने का मकसद ये कि कुरान जो है वो दावत देता है हमें सही रास्ते की तरफ। मौला अली फरमाते हैं तुम जब भी कुरान पढ़ोगे तुम्हारी एक नेकी में इजाफा होगा, ये एक ऐब में कमी होगी। स्टिल नहीं हो सकते कि हम जहाँ हैं वहाँ रुके रहें, जैसे आप अपने मोबाइल पे कोई चीज़ देख रहे हैं, क्लिप सुन रहे हैं, आपने पॉज कर दिया, पॉज कर दिया यानी प्ले रोक दिया, घूम फिर के आ गए, फिर दोबारा से उसको प्ले कर दिया, ठीक है, प्ले का निशान ऐसा होता है। आपकी ज़िंदगी स्टिल नहीं हो सकती, पॉज का बटन नहीं है हमारी आपकी ज़िंदगी में, या थोड़ी देर के लिए पॉज कर दूं मैं ज़िंदगी को, प्ले है ये, और ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी नहीं, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रही है, न सिर्फ रिकॉर्डिंग हो रही है बल्कि उसका स्क्रिप्ट भी लिखा जा रहा है किरामन कातिबीन, किरामन कातिबीन, मुअज्जिज, रिस्पेक्टेबल फरिश्ते कहा जाता है इनको, पता है आपको, किराम करम से है, यानी बुजुर्ग, रिस्पेक्टेबल, साहिब फजीलत, साहिब शरफ, साहिब मुकाम फरिश्ते, इन दोनों को सीधे हाथ वाला आपके अच्छे कामों को लिख रहा है उल्टे हाथ वाला आपके बुरे कामों को लिख रहा है। और जब इंसान कोई तन्हाई में जाके गुनाह करता है तो खुदा उल्टे हाथ वाले से कहता है हट जाओ। खुदा को भी शर्म आती है कि मेरा बंदा तन्हाई में कोई गुनाह करे और ये फरिश्ता उसे देखे, उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया जाता है। खुदा कहता है हक नहीं है तुम्हें, ये मेरा बंदा। अब देखें खुदा कितना रहमान है, फरिश्तों को भी नहीं बताता, कहता है हट जाओ, लिख लो हट जाओ, तुम नहीं देखो। कितने इज्जत देना चाहता है और हम अपने आप को कितना जलील कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात, अपने गुनाह बयान कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात, मैंने ये गुनाह किया, मैंने ऐसा गुनाह किया। हाँ, इस्लाह के लिए कभी कभी इंसान बता दे, किसी को कोई एडवाइस दे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फ़ख्र से बताए, जैसे कि आप अपने अतराफ में देख रहे हैं सोसाइटी में हर जगह लोग गुनाह करते हैं, फ़ख्र से बताते भी हैं। ज़िंदगी मुसलसल पिले है, पॉज नहीं है, स्टॉप नहीं है। लिहाजा इमाम अली ने कहा क़ुरान जो है वो जैसे एक लिफ्ट है, एलिवेटर है, वो ऊपर जा रही है, इसके हज़ार मंजिलें मसलन, थाउजेंड इसके स्टेप्स हैं। आपको यहाँ पे कोई चीज़ चमकती हुई नज़र आई पहली मंजिल पे, आप यहाँ उतर गए, सही, घूम फिर के आ गए, फिर लिफ्ट आई उसमें सवार हो गए, लेकिन जिस लिफ्ट से आप उतरे थे वो तो आगे निकल गई ना, सही। फिर तीसरी मंजिल पे फिर आपको कोई चेहरा अच्छा लगा, आप यहाँ उतर गए उससे गपशप में, ठीक। फिर आप दूसरी लिफ्ट में सवार हुए, फिर ये लिफ्ट जो पहली वाली थी ये दूसरी थी, वो भी आगे निकल गई। ये दूसरी लिफ्ट जो है ये सेकंड है, ये लिफ्ट नहीं, ये सेकंड है। ये पहला वाला सेकंड पास हो गया, पास्ट बन गया, पास्ट बन गया, यानी ऊपर चला गया। ये स्पिरिचुअल एलिवेटर है, खुदाई लिफ्ट है, यानी टाइम है यूँ कहूँ जो ऊपर जा रहा है, प्ले हो रहा है, सही, मुसलसल प्ले है, ये प्ले का निशान बना हुआ है, ये मुसलसल प्ले हो रहा है। आपने अगर इस सेकंड में इधर उधर नहीं बैठ के आप पहुंच जाएंगे। फिर इंसान को कोई तन्हाई मैसर आई, उसने उसमें वहाँ कोई गलत काम किया, कोई गाना सुना, कोई गलत चीज़ देखी, गलत चीज़ अंजाम दी, क्या हुआ, आप पीछे रह जाएंगे, ये तीसरा सेकंड भी आपसे ज़ाया हो गया। न सिर्फ ज़ाया हुआ बल्कि आपने अपना नुकसान कर दिया। क्या मतलब, इसमें अलाउ था कि आप इतना सामान ले जा सकते हैं, लेकिन जब आपने ज़्यादा सामान भर लिया, गुनाहों का वज़न बोझ क्या है, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। बात वाज है, समझ में आ रही है, आ रही है समझ में, आ रही है बेटा समझ में, यहाँ आओ, यहाँ क्या समझ में आया, इधर आओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, हाँ यहाँ आगे बताओ क्या समझ में आया।
जो हम गुनाह करेंगे हम पीछे हो जाएंगे।
और हमें क्या करना चाहिए,
अच्छा काम।
कैसे अच्छे काम करें,
नमाज पढ़ें, कुरान करें,
ऐसे,
और रोजा रखें,
और
हज करें,
और हमें अबू का कहना माने, सही,
उस्तादों का कहना माने,
उस्ताद एहसान, माशाल्लाह, बैठें, इसका मतलब है समझ में आ रहा है, सही। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात, ये कुरान की राह है, ये कुरान का रास्ता है। इसीलिए हमने तय किया है कि अपनी सिटिंग को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक हिस्सा कुरान से मुतालिक होगा और एक हिस्सा हमारी गुफ्तगू से मुतालिक होगा जो उसी के ज़ेल में होगी, ताकि हम कुरान से भी आशना हों, कुरान की लज्जत भी हासिल कर सकें और दूसरी चीज़ें भी हासिल कर सकें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको कुरान करीम के पैरोकारों में से करार दे और रोज़ क़यामत अहले बैत की हकीकी शिफा से हमें बहरमंद फरमाए। कोई सवाल अगर है तो, सवाल यह है कि नाफला नमाज का क्या फ़ायदा है, सही, इंसान के लिए 17 रकत पढ़नी मुश्किल हो जाती है, सही, चले जाए कि वो 51 रकत पढ़े। ये 17 रकत तो वाजिब है जो आपने पढ़नी है, बाकी जो नाफला नमाज़ें हैं ये दर हकीकत आपके किरदार की इस्लाह के लिए होती है। मिसाल के तौर पर आपके घर में मोटरसाइकिल है तो आपने देखो जिनकी मोटरसाइकिल आती नई नई खूब चमका रहे होते हैं, खूब रगड़ रहे होते हैं, हर संडे को धुलाई हो रही है उसकी, जी कहीं कहीं मैल नहीं आ जाए, कहीं जो है वो कचरा नहीं आ जाए, बार बार प्लग की सफाई हो रही है, हैंडल को चमका रहे हैं, मड गार्ड को चमका रहे हैं, लाइटों को चमका रहे हैं जी, होता नहीं होता? ये जो शाइनिंग दे रहे हैं आप, ये बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप नहीं चमकाएंगे तो क्या होगा कि मोटरसाइकिल नहीं चलेगी? चलेगी। गाड़ी को देखोगे, जिनको नई नई गाड़ी इनके घर में आ रही है, वो रोज़ाना हर 2-3 घंटे बाद आके कपड़ा मार रहे हैं, आके बार बार देखेंगे, शाइनिंग इसकी बरकरार है। हो अगर शाइनिंग नहीं करी गाड़ी नहीं चलेगी, चलेगी। ये नाफला नमाज दर हकीकत हमारे रूह की शाइनिंग के लिए है, हमारे रूह को चमकाने के लिए। देखिए, जब भी किसी चीज़ को चमकाया जाता है, उसको थोड़ा सा प्रेस किया जाता है। आप जब इस्तरी करते हैं गुजले हुए कपड़ों में, क्या इस्तरी रख के प्रेस करते हैं, ठंडी इस्तरी से कपड़े इस्तरी नहीं होते। आयरन जब तक हॉट नहीं होगी जी, गर्म नहीं होगी, वो आपकी कपड़े की सिलवटों को साफ़ नहीं करेगी। जब तक कपड़ों को रगड़ा ना जाए जी, उनका मैल नहीं निकलता। जब तक जूते को रगड़ा ना जाए ब्रश से, वो उसमें चमक नहीं आ सकती। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फोर्स ज़रूर अप्लाई करनी होगी। आप वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, आप कपड़े को रगड़ते नहीं, वॉशिंग मशीन का सर्किल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये रगड़ के सबब बनता है। सही। आप जूते को, जूते पर ब्रश रगड़ रहे हैं, ये जो रगड़ना है, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये उसकी शाइनिंग का इजाफा कर रहा है। अगर आप ब्रश को जूते पर रख दें, नहीं हो सकता। कपड़े को कपड़े पर रख दें और पानी में डाल दें और सर्फ डाल दें, नहीं हो सकता। सही। या जो है वो टूथब्रश को दांतों पर रख दें, नहीं हो सकता। या कंघे को लेके खड़े हो जाए आधे घंटे तक, कंघा हो जा कंघा हो जा, खूब विर्ध करें, जंतरी खोल के कोई ना कोई विर्ध शुरू कर दें, सही नहीं हो सकता। फोर्स अप्लाई करेंगे, रगड़ेंगे नहीं जब तक, तो उसको क्या होगा, शाइनिंग नहीं आ सकती। ये जो रगड़ना है, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये बेई नहीं नाफला नमाजें हैं, जो हमारी शाइनिंग में, हमारी रूह की गंदगी को दूर करने में और हमारी पाकीज़गी को बरकरार रखने में हमारी मदद देते हैं। सबसे पहले आपकी ज़िम्मेदारी, वाजिब नमाजें होनी चाहिए। कोई वाजिब नमाज आपसे ना छूटे, फजर ज़ोर, क्योंकि आइंदा ज़माने में हम देख रहा हूँ कि हमारी 4 नमाजें वाजिब होंगी, ज़ोर असर मगरिब ईशा। फजर का तस्करा ही नहीं होता, नमाज़ पढ़ते बेटा जी, पाबंद जी जी, बस फजर की नहीं होती। फजर, फजर भी अहम है, फजर सबसे ज़्यादा अहम है। चलते इंसान जाग रहा है, अब्बा ने थप्पड़ मार दिया, अम्मा ने डांट लगा दी, दोस्त खींच के ले गया, जरा पढ़ ही लेता है इंसान, ये कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि आप नींद छोड़ के उठें। अगर किसी की आँख नहीं खुलती है तो सूरह कहफ की आखिरी आयत पढ़ के सोए, वजू और सूरह कहफ की आखिरी आयत। सूरह कहफ कुरान की इंडेक्स से खोलिएगा, सूरह कहफ की आखिरी आयत, और आयत का नंबर है 110। 110 किसका नंबर है? ये अली का, मौला अली का। ओ, यानी आप अल्लाह से भी मदद लें और मौला अली से भी मदद लें कि मौला अली मुझे सुबह नमाज के लिए उठना है, मेरी मदद कीजिए। या हज़रत अली अकबर से, किसी से भी तवसल कर सकते हैं। आयत पढ़ें, कुल इन्ना माना बशर मिसलुकुम, तर्जुमा, ए खुदा 3 दफ़ा, ए खुदा मुझे मसलन 5 बजे उठा देना, ए खुदा मुझे 5 बजे उठा देना, ए खुदा मुझे 5 बजे उठा देना। खुदा एक फरिश्ते को मुकर्रर करता है जो आसमान से आता है 5:30 बजे, 5 बजे वो आपको उठाएगा, उठ जाओ। हाँ, उठाता ज़रूर है वो, वही ये आपने करना है। हाँ ठीक है ना। हाँ उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ अभी, और करवट लिए और पता चला के क्या हुआ, आराम से आराम, पहले वाजिब नमाज है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता। 11 रकत नमाज है नवाज़ शब, 11 रकत नमाज है, جس میں سے جو ہے وہ چار نمازیں دو دو رکعت کر کے پڑھ جائیں گی نماز شب کے عنوان سے، پھر دو رکعت نماز جو ہے نماز شفا، اور ایک رکعت نماز وتر کے عنوان سے. فجر سے پہلے دو رکعت نماز ہیں، ظہر سے پہلے آٹھ رکعت ہیں، یعنی چار نمازیں دو دو رکعت کر کے، عصر سے پہلے اس کی چار نمازیں دو دو رکعت کر کے آٹھ رکعت، مغرب کے بعد چار رکعت نماز، عشاء کے بعد دو رکعت بیٹھ کر. صحیح.
اگر 40 مومنین کے نام دینے ہوتے ہیں اس میں اگر ضروری ہے کہ آگے پیچھے اس کا کچھ فیور ہو سکتا ہے، جیسے کہ اتفاق یا غلطی سے دو ڈیجٹ آگے ہو،
مومنہ کا نام آ جائے کہیں،
42 ہو گیا یا 39 ہو گیا ہماری غلطی میں،
نہیں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں
اگر نام نہ لیں تو
کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لیں تو اچھا ہے، بس اس کے علاوہ کسی اور کرنا، اس کے علاوہ سب لے سکتے ہیں. ہاں نہیں، امی کا لیں، بہن کا لیں، نانی کا لیں، چاچی کا لیں، تائی کا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے، لیکن اس کا نام نہ لیں. ہیں کون نہیں، اس کا پہ جواب بعد میں دوں گا میں.